तो बहुत सुंदर मैत्रेय मुनि भगवान के इस दिव्य विराट रूप का वर्णन किए। पश्चात संसार के काल का वर्णन करते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवद गीता में 5 विषय वस्तु है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। काल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में हम समय की महिमा नहीं जानते, इसीलिए सांसारिक कार्य में पड़े। यदि किसी को समय की महिमा पता चल गई, वे अपना एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं जानेंगे। समय के बारे में आइए थोड़ी जानकारी समय के बारे में भी ले लीजिए। समय हमारे लिए तो समय घड़ी है, सेकेंड, मिनट और घंटे। जब 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट होती है, जब 7 मिनट मिलती है तब 1 घंटा होता है, ऐसे 24 घंटे होते हैं तब 1 दिन होता है, ऐसे 30 दिन होते हैं तब 1 महीना होता है, ऐसे 12 महीने होते हैं तब 1 साल होता है। 12 महीने का 1 साल होता है। ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तब 1 कलयुग बीतता है। एक कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और 8,64,000 वर्ष जब बीतते हैं तब 1 द्वापर युग बीतता है। जब 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तब 1 त्रेता युग बीतता है, और जब 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब 1 सतयुग बीतता है। ऐसे कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युगों को हम मिलाते हैं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 वर्ष जब होते हैं तब 1 चतुर्युग होता है। तो ऐसे जब 100 चतुर्युग होते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। 43,20,000 वर्ष जब 100 बार होते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 घंटा होता है, 12 घंटा, और उतनी ब्रह्मा जी की रात है। इसका अर्थ हुआ ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना लंबा है जानते हैं? ब्रह्मा जी का 1 दिन 8,64,00,000,000 वर्ष का है। यहां पृथ्वी पर 8,64,00,000,000 वर्ष बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का 1 दिन खत्म होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 365 दिन का 1 साल। अब कैलकुलेटर बंद हो गया मेरा, अब आप केवल कल्पना ही कीजिए, अब गिनना तो अब संभव नहीं है। ब्रह्मा जी का 1 दिन 8,64,00,000,000 वर्ष, 1 दिन, ऐसे 365 दिन का 1 साल। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, और ब्रह्मा जी का जब 100 साल होता है तब भगवान विष्णु 1 बार सांस लेते हैं। कल्पना करो भक्तों, वे भगवान कितने विशाल होंगे, वे भगवान कितने अद्भुत होंगे। और भगवान विष्णु जब 1 बार सांस लेते हैं तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मा और मनुष्य की तो गिनती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 1 दिन में ही करोड़ों बार हमारा जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो, भगवान के सामने, भगवान छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु कुछ है ही नहीं। यह है काल, फिर भी हम कहते हैं कि अभी तो बहुत जीना है, बहुत साल बाकी हैं, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत वर्षों, बहुत जीना है। आज तो मैं समय बहुत कम हमारे पास है, परंतु समय की वैल्यू हम नहीं समझते। कई बार लोग ताश खेलते हैं, हम कहते हैं भाई ताश क्यों खेल रहे हो? कहते टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, कहते हैं ये क्यों खेलते, टाइम पास कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तू क्या टाइम को पास करेगा, टाइम तुझे पास कर रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है। हम क्या टाइम को पास करेंगे? काल चक्र स्वयं भ्रमिम कहते हैं कि यह काल रूपी चक्र पूरी दुनिया मिलकर भी समय को रुकाना चाहे रुक नहीं सकता है। कभी बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है, ये काल पानी की तरह समय जा रहा है। ऐसे जाते हुए समय को समझना चाहिए, समय की वैल्यू को समझना चाहिए। आज का दिन हमारे जीवन से चला गया, यह दिन जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। और ऐसे एक दो दिन जाते जाते एक दिन मर जाएंगे, चिता पर जलाकर राख बना देंगे हम, वो दिन दूर नहीं है। समय की वैल्यू को समझना चाहिए। समय बहुत कम हमारे पास है और उस कम समय में भी सब लोग प्लान लगाते हैं, इतना घर बनाऊंगा, एक सिरोडी में, एक मुंबई में, एक सूरत में, एक अहमदाबाद में, बड़ौदा में, यहां वहां, और उसमें भी ये प्लान वो प्लान, फर्नीचर करूंगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम। भागवत में दृष्टांत दिया है चूहे का, जैसे चूहा जब अपना घर बनाता है खेत में तो इस कोने से बिल बनाना शुरू करता है, दूसरे कोने से निकलता है और उसमें भी तीन चार दरवाजे रखता है। तो संसार के लोग भी अपने घर के यहां दरवाजे, वहां दरवाजे, यहां फर्नीचर, यहां ड्राइंग रूम, यहां बेडरूम, यहां अटैच बेडरूम, यहां बच्चों का रूम, ऐसा प्लान बनाते हैं, एक प्लान, दो प्लान, बारंबार प्लान बनाते हैं। उतने में हम देखते हैं वह चूहा प्लान बनाता है यहां वहां, जैसे उस बिल के बाहर आता है वो सांप गप करके उसे खा जाता है। वैसे हम भी प्लान बनाते रहेंगे, प्लान ये प्लान वो प्लान, प्लान प्लान प्लान, मर गए सारे प्लान, यही रह गए, हम चले गए ऊपर, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं आएगा। क्या साथ में आएगा? जीवन चल जाए, उतना धन उतनी संपत्ति काफी है, क्यों? आप यदि करोड़पति भी बन गए लेकिन जाओगे तो खाली हाथ। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने से धन मिलता है, लेकिन धन से क्या करोगे? आप यदि पांच रोटी खाते हो तो पांच ही खाओगे, पचास थोड़ी ना खाओगे। कोई हजार पति है और लखपति बन गया तो पांच रोटी खाता है तो पांच ही खाएगा, और वह धन जेब में भी लेकर नहीं घूमता है। ऐसा नहीं कि करोड़पति हो करोड़ों रुपये जेब में लेकर, बैंक में पड़े होते हैं, बैंक में ही पड़े रहते हैं। अब हमारे मन में बस इतना होता है कि देना बैंक में पचास करोड़ रुपए पड़े हैं, बस इतना समझकर हम लोग खुश रहते हैं। यदि समझकर ही खुश रहना है तो समझ लो ये सभी बैंक हमारे बाबा की है, सभी बैंक हमारे बाप की है, हमारे मालिक की है। समझकर ही खुश रहना है तो भगवान का भजन करो, हम सभी बैंकों के मालिक है। परंतु लोग धन संपत्ति जुटाने में रात दिन मेहनत, रात दिन। हमने तो देखे हमारे डायमंड मार्केट में करोड़पति लखपति, उनकी पचास पीढ़ी खा पी सके उतना धन उसके पास है, परंतु रात दिन मेहनत करते। क्या साथ में लेते? हमारे इतिहास में सिकंदर नाम का व्यक्ति आपने सुना होगा, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उनके पिता पुरु ने कहा, देखो बेटा दुनिया को जीतकर क्या करोगे? नहीं मानो। दुनिया को जीतने के लिए घर से निकला। कहा जाता है लगभग 80% उन्होंने दुनिया को जीत लिया, परंतु पता चला उसे क्षय रोग हुआ है, आज की भाषा में कैंसर रोग हुआ है। पता चलते ही वापस घर पर लौटा और कुछ ही दिन में मर गया। लेकिन मरते समय सिकंदर एक उपदेश देकर गया, अपने स्वजनों को कहकर गया कि जब आप लोग मुझे दफनाओगे तब मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना। कहा क्यों? सिकंदर ने कहा कि मैं तो मेरे जीवन में समझ नहीं पाया, परंतु आने वाली पीढ़ी, संसार में आने वाले लोग मेरे इस कार्य से समझ पाएंगे कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, और जब इस दुनिया से गया तब दोनों हाथ खाली हैं। यद्यपि 80% दुनिया का राजा था परंतु दोनों हाथ। इसलिए तो कवि लोग कहते हैं, इकट्ठे कर जहां के घर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे, कुछ साथ में नहीं। यदि भगवान की भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का नाम लिया होगा तो वह हमारे साथ आ सकता है। धन संपत्ति पुत्र परिजन तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो हमारे पास बहुत कम समय है, परंतु हमें तो लगता है हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। इंद्र को एक दिन ऐसा अभिमान हो गया, एक बार इंद्र घूमते घूमते लोमस ऋषि के पास आया। लोमस ऋषि एक महान ऋषि है, इसका नाम लोमस ऋषि इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे रोंगटे थे, रोंगटे बाल शरीर के ऊपर, तो बहुत रोम थे इसलिए उनका नाम रोमस था, परंतु लोमस हो गया अपभ्रंश भाषा में। बहुत सारे उनके ऊपर शरीर के ऊपर बाल थे। तो इंद्र घूमते घूमते लोमस ऋषि के पास आया। लोमस ऋषि घास की जो गठड़ी होती है, घास की गठड़ी के नीचे बैठकर, उनकी छांव में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। और जब सूर्य यहां से यहां आ जाता तो उस वो बाजू छांव में बैठ जाते। तो इस प्रकार अपना दिन बिता रहे थे। इंद्र आए, इंद्र ने कहा, लोमस ऋषि आप इस प्रकार से भजन कर रहे हो, अपने लिए कुटिया तो बना दो। लोमस ऋषि ने कहा, जीना है बहुत कम समय तक, क्या कुटिया बनाएंगे, क्या मगजमारी करेंगे। अच्छा, इंद्र ने जिज्ञासा की, अच्छा तो आप कितना जीने वाले हो, आपकी उम्र कितनी है। लोमस जी ने कहा कि जीना है बहुत कम, उसमें क्या ये सब फजीयत में फंसे, घर बनाओ, मेंटेनेंस करो। इंद्र ने पूछा, आप कितना साल जीने वाले हो। लोमस ऋषि ने कहा, देखो ये मेरे शरीर में बाल देख रहे हो, ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त तो होता है तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है। ब्रह्मा जी का, अब आपको तो पता है ब्रह्मा जी का 100 साल कब होता है, 8,64,00,000,000 वर्ष में एक दिन होता है, जैसे 100 साल। कहते ब्रह्मा जी का जब 100 साल होता है तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है, ऐसे करके मेरे सारे बाल जब गिरेंगे तब मैं मरूंगा। वो लोमस ऋषि कह रहे हैं कि जीना है बहुत कम दिनों तक, अब क्या फजीयत करें। ये लोमस ऋषि कह रहे हैं जीना कम, और हमारे जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है, 50 साल 60 साल भी खींच पाएंगे नहीं खींच पाएंगे कोई भरोसा नहीं, उसमें भी कितना प्लान, ये घर वो घर, ये रूम बेड। समय की महिमा को जानना चाहिए। तो इस प्रकार काल का वर्णन करते हैं, और तत्पश्चात मैत्रेय मुनि विदुर जी को इस सृष्टि का वर्णन करते हुए, अब सृष्टि में प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का पूरा प्रवचन अब इसी के ऊपर होगा। सृष्टि का तो बता दिया किस प्रकार से पृथ्वी ब्रह्मांड बने, अब सृष्टि में प्रजा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई बताते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण किया। उस ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु, उसकी नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, आप प्रजा की उत्पत्ति करो। भगवान का आदेश लेकर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा, ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि, ब्रह्मा जी के कान से पुलत्स्य, ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह ऋषि, ब्रह्मा जी के हाथ से कर्तु, त्वचा से भृगु, अंगूठे से यक्ष, प्राणों से वशिष्ठ, और ब्रह्मा जी की गोद से नारद मुनि प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को जन्म दिया और कहा कि आप 10 विवाह करके सृष्टि को आगे चलाओ, परंतु 10 ने कह दिया हम लोग विवाह नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग से, अपने दाएं अंग से मनु को और बाएं अंग से शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हुए, दोनों आज्ञाकारी पुत्र और स्त्री। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को कहा, आप दोनों विवाह करो और पृथ्वी के ऊपर जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। अब तक मैथुनी सृष्टि नहीं हुई थी, ब्रह्मा जी ने ये पुत्र को पैदा करने के लिए किसी स्त्री का सहारा नहीं लिया था, परंतु ब्रह्मा ने कहा अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, मनुष्य की योनियों को जन्म दो। और यह सत्य है, ये जितने भी मनुष्य है इनका जन्म मनु महाराज से हुआ है, इसलिए मनुष्य में मनु शब्द लगा है, इसे मानुज भी कहा जाता है। मानुज इसलिए कहते हैं, मनु माने मनु महाराज, ज माने जन्म, मनु से जिसका जन्म हुआ है इसे मानुज कहते हैं। हम जितने भी मनुष्य है ये मनु और शत्रुपा से प्रकट हुए हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि आज हमारे बालकों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बालकों तीसरी में मैं पढ़ चुका हूं और आपके बालक भी पढ़ते होंगे और आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है बालकों इस संसार में मनुष्यों की उत्पत्ति बंदरों से हुई। पहले ये मनुष्य बहुत बड़ा बंदर था, चार पांव पर चलता था, फिर दो पांव पर चलने लगा, फिर धीरे धीरे करके उसकी पूंछ चली गई, उसके बाल भी चले गए, फिर उसका मुख भी अच्छा हो गया, फिर वह दोनों हाथ से खाने लगा पीने लगा और आज वह मनुष्य बन गया। डार्विन का सिद्धांत है, परंतु ये बिल्कुल गलत बात है। भागवत प्रमाण है मनुष्य का जन्म मनु महाराज से होगा। तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि जाओ मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, पृथ्वी के ऊपर जाओ। तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और बीचों बीच पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे अतल तलातल वितल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक मरलोक सिद्धलोक तपलोक ब्रह्मलोक। तो जब ये मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आने के लिए निकले, आकर देखा तो पृथ्वी थी ही नहीं, बाकी के सब लोग थे, पृथ्वी नहीं थी। कारण यह था कि उस समय दीति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु का जन्म हो चुका था। ये दोनों महान असुर थे, इन्होंने देखा कि देवताओं के साथ युद्ध करना है और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाले इस पृथ्वी पर रहेंगे और पृथ्वी पर रहने वाले यज्ञ कर करके देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, पृथ्वी को ही कहीं छुपा देता हूं, यज्ञ होगा ही नहीं। तब हिरणाक्ष जो बड़ा भाई था इस पृथ्वी को लेकर रसातल में छुपा दिया था और ये लोग जब आए तो पृथ्वी थी ही नहीं। वापस ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी के पास आकर कहे, ब्रह्मा जी वहां पर हम गए थे परंतु पृथ्वी वहां पर थी ही नहीं। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि भगवान ने कहा है सृष्टि करने के लिए और पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी भगवान को याद करने लगे और याद करते हुए अपने मुख से भगवान का नाम लेने लगे। वह नाम किस प्रकार से है, आइए ब्रह्मा जी के साथ हम भी भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, गाएंगे और ब्रह्मा जी की श्रद्धा और देवताओं की भक्ति से आज भगवान का एक अवतार होगा। आइए ब्रह्मा जी के इस कीर्तन में भाग लीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
सभी लोग प्रेम से गाइए,
हरे राम
भक्तों की पुकार होती है निश्चित भगवान माँ उपस्थित होती है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम
याद कर रहे हैं, भगवान को नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम लेते ही, भगवान को याद करते ही उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ जैसा छोटा सा छिद्र निकला। पल भर में धीरे 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 वह हाथी की तरह बड़ा होता गया। ब्रह्मा समेत सभी देवता सोच में पड़ गए, ये कौन है, कहां से आए हैं। परंतु उसी क्षण वह छिद्र पल भर में पर्वत के समान हो गया। देवता समेत ब्रह्मा जी समझ गए कि साक्षात भगवान श्री विष्णु बड़ा रूप लेकर प्रकट हुए हैं। सब लोग प्रार्थना करने लगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान वराह की मंत्र के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, भगवान वराह को रिझा रहे हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान वराह प्रकट हुए हैं, सब लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय भगवान वराह गर्जना करने लगे। भगवान की गर्जना से तीनों लोग कंपायमान होने लगा। भगवान अपनी पूंछ ऊपर करके आकाश के समान विकराल शरीर, भगवान की गर्दन के बालों से आकाश के बादल बिखर गए। उनका शरीर कठोर, चमड़ी के बाल कड़क, सफेद दांत, आंखों से करोड़ों सूर्य जितना तेज पुंज निकल रहा है। वज्रमय पर्वत जैसा शरीर पानी में गिरते ही समुद्र दोनों भागों में ऊपर हो गया, पहाड़ बन गए। भगवान रसातल में जाकर सबसे पहले अपनी पृथ्वी का उद्धार किए, बाद में हिरणाक्ष के साथ धमाधार युद्ध किए। इतिहास में प्रथम बार भगवान हिरणाक्ष के साथ युद्ध करते भगवान के हाथ से गदा गिर गई। गदा लेकर धमाधार युद्ध करने लगे। विंध्याचल पर्वत हिमाचल पर्वत के महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। पृथ्वी का त्राण करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए, ऋषि मुनियों के बुझे हुए यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए भगवान ने अपनी गदा से हिरणाक्ष को धमाधार गदा का प्रहार किया। हिरणाक्ष का वध हुआ, खून की नदियां बह गई, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, भगवान की विजय हुई। बोलो यज्ञपति भगवान वराह की, यज्ञपति भगवान वराह की, यज्ञपति भगवान वराह की।
वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना केशव धृता शुकर वसति दशन शिखरे धरणी
शशिनी कलंक कलेवनिमाना केशव धीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेवनिमाना केशव धीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीता शुकर रूपा केशवद्रीता शुकर रूपा
केशवद्रीता शुकर रूपा
केशवद्रीता शुकर रूपा केशवद्रीता शुकर रूपा
केशवद्रीता शुकर
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो यज्ञपति भगवान वराह देव की
जय।
तो इस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार धारण किए। वास्तव में पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है और यह पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी बनना पड़े तो बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आपको कोई कहे कि आपको अपने मित्र की रक्षा करने के लिए गधा बनना होगा तो आप बनेंगे? अपने मित्र की रक्षा करने के लिए आपको एक सुअर बनना होगा बनेंगे? परंतु भगवान बन जाते हैं, यह नहीं देखते हैं कि लोग क्या कहें। यद्यपि भगवान का देह तो सच्चिदानंदमयी है, भले वे सूकर रूप भी लेते हैं तो वे अद्भुत रूप है, संसार के साधारण सूकर की तरह नहीं होता है। तो इस प्रकार केशव भगवान श्री विष्णु ने सूकर रूप धारण किया और विदुर जी की जिज्ञासा सुनकर हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तत्पश्चात अब मैत्रेय मुनि मनु और शत्रुपा से 5 संतान प्रकट हुए। 2 अध्याय में 5 संतानों की कथा है। मनु और शत्रुपा ने 5 संतान को जन्म दिया, उनमें से 2 पुत्र और 3 पुत्री थी। तीन पुत्री का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति, और दो पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत था। तो सर्वप्रथम मैत्रेय मुनि मनु और शत्रुपा में की तीन पुत्री में से एक पुत्री देवहूति जिसका नाम था, उनकी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि देवहूति नामक बहुत सुंदर पुत्री प्राप्त थी और उनको विवाह करने के लिए जब कहा गया तो देवहूति की एक ही मांग थी, मैं विवाह करूंगी परंतु भक्त के साथ। आज किसी लड़की को पूछा जाए आपको कैसा वर चाहिए तो कहेगी पढ़ा लिखा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए और विवाह के बाद हमें कश्मीर लेकर जाए, महाबलेश्वर लेकर जाए, कुल्लू मनाली लेकर जाए, सब जगह पर घुमाए, ऐसा वर चाहिए। परंतु देखिए देवहूति कह रही है मुझे भगवान के भक्त के साथ विवाह करना है, उनके पास धन न हो कोई बात नहीं। आज तो सब लोग धनी पति चाहते हैं लेकिन देवहूति जानती है धन से कोई सुखी नहीं हो सकते हैं। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं लेकिन फिर भी एसी में बैठते हैं, एयर कंडीशन में बैठकर भी जलते रहते हैं। हमने तो देखा है अपने आप, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, डायमंड मार्केट में साइड होल्डर हैं, अरबों रुपए उनके पास हैं लेकिन एयर कंडीशन में बैठे हैं, हृदय इतना जल रहा है कॉम्पिटिशन में, क्या नहीं है उनके पास। लेकिन फिर भी धन कोई सुख का कारण नहीं है, भक्ति से सुख मिल सकता है। देवहूति इस बात को जानती थी, पिताजी को कहा कि मुझे भक्त पति के साथ विवाह करना है। और उसी समय ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया था कि आप विवाह करो और विवाह करके सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब कर्दम ऋषि हमारी तरह तुरंत विवाह करने बैठ गए, ऐसा नहीं था। कर्दम ऋषि जानते थे विवाह करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। सबसे पहले कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए गए। कहते हैं 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने कहा मुझे एक भक्त पत्नी चाहिए। देखिए यहां भी यही मांग है, बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भक्त पत्नी को मांगा है और आज किसी को पूछा जाए कैसी लड़की चाहिए, कहते माधुरी दीक्षित चाहिए। फिर खुद का भले ठिकाना न हो, जिसको देखकर दिन बिगड़ जाता है, ऐसी शक्ल ऐसी सूरत वाला भी अच्छी सी अच्छी लड़की चाहता है, गोरी चाहिए जिसके बाल काले होने चाहिए। परंतु कर्दम ऋषि कह रहे हैं कैसे भी हो भक्त होने चाहिए, भक्त के साथ विवाह करना, भक्त को भक्त के साथ विवाह करना चाहिए। समाज में दुख की बात है, लोग केवल इस चमड़े को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, लेकिन ये चमड़ा कब तक अच्छा रहेगा? कितनी भी अच्छी लड़की के साथ विवाह करो कितने साल तक अच्छे रहे, अंततः तो उनका स्वभाव और उनके संस्कार देखने चाहिए। यदि भक्ति है तो सर्वे गुणे तत्र, उसमें सभी गुण होंगे, नहीं तो चमड़े का धंधा खोलना है तो। मुझे एक कथा याद आ रही है, एक बार राजा जनक की सभा में बहुत संख्या में राजा महाराजा एकत्रित हुए थे, बहुत सारे राजा जनक की सभा में। जनक को तो जानते हैं विदेह राज जनक, बहुत राजा राजाओं का सम्मेलन था। और उस समय अष्टावक्र ऋषि हमारे इतिहास में एक ऋषि है जो आठों अंगों से टेढ़े हैं, उसका एक अंग भी सीधा नहीं है। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक की सभा में पधारे तो अष्टावक्र ऋषि को देखकर सभी राजा ठठाकर हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे, अष्टावक्र ऋषि तो। अष्टावक्र ऋषि ने देखा कि ये सब लोग हंस रहे हैं, अष्टावक्र उससे डबल हंसने लगे, दो गुना हंसने। राजा सोच में पड़ गए कि हम तो इसको देखकर हंस रहे हैं, ये किसको देखकर हंस रहा है। सभी राजाओं ने पूछा कि हे ऋषि मुनि, हम तो आपके रूप को देखकर हंस रहे हैं, आप किसको देखकर हंस रहे हैं। तवष्टा होकर ऋषि ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं क्यों हंस रहा हूं, जानना चाहते हो? मैंने सुना था कि यहां पर राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं, मैंने सुना था कि यहां राजाओं की सभा लगी है, परंतु यहां आकर देखा तो सब लोग मोची बैठे हुए हैं, सब मोची दिख रहे, सब लोग चमड़े का धंधा करने वाले बैठे हैं। आप लोग मेरे चमड़े को देख रहे हो, इस चमड़े के अंदर रहने वाली आत्मा को नहीं देख रहे हो। राजा हो तो क्या हो गया, चमार है। भक्तों, हमें भी इस प्रकार से चमार मोची नहीं बनना चाहिए, केवल चमड़े को देखकर विवाह करना, हृदय में भक्ति देखनी चाहिए, अंततः तो भक्ति साथ में रहती है ना। कर्दम ऋषि ने भगवान को कहा कि प्रभु, मुझे एक भक्त कन्या के साथ विवाह करना है। भगवान ने कहा, आज से 3 दिन के बाद साक्षात मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर तेरे पास आएंगे। मनु महाराज 3 दिन के बाद अपनी पुत्री देवहूति और अपनी शत्रुपा के साथ कर्दम ऋषि की झोंपड़ी में आए हैं। अब देखिए, कर्दम ऋषि कोई धनी नहीं, परिवार के नहीं थे, फटी पुरानी धोती पहनी थी, एक छोटी सी कुटिया थी। और ये मनु महाराज कोई देश के राजा नहीं, पृथ्वी के राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। और 1-2 साल के, 5 साल के लिए नहीं, कहते हैं 71 चतुर्युग तक पूरे मनु थे। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने उसे मनु बनाया था। 71 चतुर्युग तक एक छत्र राजा राज करने वाले, और राज कन्या देवहूति का हाथ एक झोंपड़ी में रहने वाले को देने जा रहे हैं। यह है शास्त्र की घटना। पहले के पिता अपनी पुत्री का हाथ देते समय धन नहीं देखते थे, स्वभाव देखते थे, भक्ति देखते थे। क्या वे मूर्ख थे, पागल हो गए थे मनु महाराज कि अपनी राज कन्या का हाथ किसी झोंपड़ी में रहने वाले को? वे जानते थे कि करोड़ों रुपये की महल में रहने वाले अपनी बेटी को सुखी नहीं कर पाएंगे, परंतु झोंपड़ी में रहने वाला यदि कृष्ण का भक्त है तो उसकी पुत्री को सुखी रख पाएगा। ये मनु महाराज जानते हैं, ब्रह्मा जी और भगवान इस बात को जानते हैं, हम क्या जाने। हम तो केवल माल, मिलकत, दौलत, घर और बंगला देखते हैं, चमड़ा देखते हैं। हृदय देखना चाहिए, संस्कार देखना चाहिए। अपना हाथ, अपनी पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम जी के हाथ में दे दिया। कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ हुआ, और विवाह करने के बाद तुरंत कर्दम ऋषि समाधि में बैठ गए। कर्दम ऋषि समाधि में बैठे हैं, और यहां पर देवहूति उनकी सेवा कर रही हैं। और 1-2 दिन की समाधि नहीं भक्तों, जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से लेकर 12 वर्ष बीत गए, परंतु कर्दम की समाधि नहीं टूटी। और यहां इस संसार में यदि किसी पति का विवाह हो, दूसरे ही दिन पत्नी कहती है हनीमून में जाना है, कहां लेकर जाऊंगी, और उसमें भी पति न लेकर जाए तो क्रोधित होती है। कर्दम ऋषि 12 साल तक समाधि में बैठे, और 12 साल तक देवहूति ने उनकी सेवा की। सेवा कर करके 12 साल तक कर्दम जी ने यह नहीं पूछा कि तुमने भोजन किया, खाना खाया, नहीं खाया। कहते हैं 12 साल जिस रूप को लेकर देवहूति आई थी, राजकन्या थी, अपने पति की सेवा कर करके पूरा शरीर सूख गया, सुखा दिया शरीर। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, कर्दम जी तो समाधि में थे तो इसने 12 वर्ष तक उनकी क्या सेवा की? समाधि में बैठे रहने वाले की सेवा क्या करे? तो मैं तो इतना ही कहता हूं, पति यदि भजन भक्ति में लगा है और उसको डिस्टर्ब न करना, यही पत्नी के लिए सबसे बड़ी सेवा है। पति यदि धर्म का काम करना चाहता है, उसको रोके नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा है। बारह वर्ष के बाद जब करदम जी की आंखें खोली, एक आचार्य तो कहते हैं कि करदम जी को पता भी नहीं था मेरा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। देवहूति को देखकर कहा कि माते आप कौन हो? देवहूति ने कहा कि हमारा विवाह हो चुका है, मैं आपकी पत्नी हूं। तब करदम जी को याद आया कि अरे बाप रे, जब ये विवाह करके आई थी तब कितनी सुंदर इनका रूप था और मेरी सेवा करके इसका शरीर सूख गया। करदम जी ने सोचा कि मेरी सेवा की है इसलिए इनकी सेवा करना, स्त्री को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। देखिए भगवान के भक्त भी साधारण नहीं होते हैं। ये संसार के लोग को ज्यादा से ज्यादा महाबलेश्वर, कुल्लू मनाली लेकर, कश्मीर लेकर जाएंगे। आप देखिए करदम जी अपनी पत्नी को कहां लेकर जाते हैं। करदम जी ने कुछ समय तक भक्ति को विराम दिया और देवहूति को कहा कि प्रिय मुझे क्षमा करना, मैं भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करो, बाजू में बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने गई। करदम जी की योग भक्ति तपस्या से बिंदु सरोवर से 1000 दासियां प्रकट हुई। उस अमृत से स्नान कराने के कारण उसका शरीर बहुत सुंदर हो गया। दासियों ने अलंकार पहनाया, आभूषण पहनाया, साड़ी पहनाई और जो रूप से, जिस रूप को लेकर अपने पिता के घर से आई थी उससे करोड़ों गुना सुंदर हो गई। करदम जी ने कहा कि प्रिय विवाह हुआ उस दिन से लेकर आज तक मैं तुझे कहीं नहीं लेकर गया, आज मैं तुम्हें विचरण कराना चाहता हूं, घुमाना चाहता हूं। करदम जी ने उसी समय एक मनोमय एक विमान को प्रकट किया और विमान आज की जैसा साधारण विमान नहीं, बहुत बड़ा विमान जिसमें पूरा नगर ही उपस्थित था और मंत्र से चलने वाला विमान। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को बिठाया, करदम जी बैठे और उस विमान को आकाश के मार्ग से उड़ाया और ऊपर के लोकों में विचरण। नीचे के लोकों में तो करदम जी ने कहा होगा देखो महाबलेश्वर, आज के कीड़े मकोड़े वहां जाते रहते हैं, कहते हम लोग हनीमून में गए, वहां नहीं जाना है, स्वर्ग लोक में लेकर गए। चित्ररथ गंधर्व जहां पर विचरण करते हैं, देवता भी जिस बगीचे में जाने के लिए लज्जित शर्माते हैं, ऐसे ऐसे बगीचों में करदम जी ने अपनी पत्नी को घुमाया, लेकर गए, कई महीनों तक विचरण कराया। फिर देवहूति ने एक दिन कहा कि पतिदेव अब हमें घर पर वापस लौटना चाहिए, आज की कोई स्त्री यदि घूमने के लिए गई हो तो ऐसा नहीं कह सकती है कि चलो घर पे वापस चले, दो दिन बढ़ा लीजिए, ऐसा कह सकती है क्योंकि घर पे जाएंगे तो वही भोजन पकाना, कपड़े धोना, वही काम फिर से शुरू। लेकिन देवहूति ने कहा अब घर याद आ रहा है, आप घर पर चलिए। करदम और देवहूति घर पर आए और करदम जी ने उस समय देवहूति के गर्भ से 9 पुत्री को जन्म दिया। देवहूति के गर्भ से 9 पुत्री का जन्म और 9 पुत्री का विवाह, कला का विवाह मरीचि के साथ, अत्रि का अनसुया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भु का पुलस्य के साथ, गति का पुल के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ और शांति नाम की पुत्री का विवाह अथर्वा के साथ कराया। 9 कन्या का विवाह 9 ऋषियों के साथ कराया और तत्पश्चात करदम जी की कृपा से देवहूति के गर्भ से एक अद्भुत बालक साक्षात भगवान का अवतार हुआ। बोलो भगवान कपिल देव की, कपिल देव भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय। और यह कपिल नाम के बालक का जन्म होते ही करदम ऋषि अपना घर छोड़ दिए। सबसे पहले अपने बालक के पास जाकर पूछे बेटा, बेटा मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं वन में जाना चाहता हूं। तब इस संसार के पुत्र ने अपने पिता को कहा है गच्छ कामम मया पृष्टो मई संन्यस्त कर्मणा जीत्वा सुदुर्स्थिरं मृत्युम अमृत्वायं मां भज। पिताजी आप जाओ और जिसको जीतना मुश्किल है ऐसी मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, पुत्र ने आदेश दिया है। और फिर अंत में करदम जी अपनी पत्नी के पास आए और पत्नी के पास आकर कहने लगे, देवी अब मैं सन्यास लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर वन में जा रहा हूं। इतना सुनकर तो देवहूति के हृदय में दुख की आभा उठ गई। देवहूति को बहुत दुख हुआ। करदम जी ने कहा मैं जा रहा हूं, देवहूति ने कहा आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। प्राणनाथ तुम, प्राणनाथ तुम, बिनु जग माही मोके सुखद कतो कछु नाही। प्राणनाथ, इस संसार में आपके विरह में मैं कहीं सुखी नहीं हो पाऊंगा, आपके विरह में मैं दुखी हो जाऊंगी, और आपके बिना इस संसार में मेरा क्या काम है। बहुत सुंदर कहती हैं, जीय बिनु देह नदी बिन वाणी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी तैसे जीय बिनु देह नदी बिन वारी। जैसे बिना पानी के नदी का कोई कुछ काम नहीं होता है, बिना पानी के नदी कुछ काम की नहीं रहती है, बिना प्राण के यह देह कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे ही है नाथ बिना आपके मैं कुछ काम की नहीं रहूंगी, संसार में कुछ काम की नहीं रहूंगी। परंतु करदम जी अपनी पत्नी को मनाते हैं कि प्रिय मैं तो जा रहा हूं, परंतु आत्मा जायते पुत्र, मैं मेरे पुत्र को छोड़कर जा रहा हूं, वो तुम्हें शास्त्र का ज्ञान देगा, तुम्हें सुखी करेगा। इतना कह के करदम जी अपना घर छोड़कर निकल गए। और यहां पर एक दिन की बात, माता देवहूति अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र कपिल देव के चरणों में बैठी हैं और बैठकर जिज्ञासा करती हैं। बहुत सुंदर जिज्ञासा है कि हे बेटा, आज तुम मेरे बेटे नहीं, आज तुम गुरु हो और तुम मुझे शास्त्र का ज्ञान प्रदान करो। तो जिज्ञासा को सुनकर भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, तत्पश्चात शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया। और ज्ञान देकर देवहूति भगवान की परम भक्त बन गई और भगवान कपिल देव अपना घर छोड़कर वन में जाने के लिए निकल पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यह इदम नु शृणोति यविद्यते कपिल मुने। यदि कोई देवहूति कपिल देव और करदम ऋषि के इस प्रसंग को सुनता है तो उसके जीवन में शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मनु और शत्रुपा की 5 संतान, उनमें से देवहूति की कथा मैत्रेय मुनि ने सुना दी। किस प्रकार देवहूति का विवाह हुआ, 9 पुत्री का विवाह, 1 पुत्री का जन्म। अब मनु और शत्रुपा की दूसरी कन्या आकुति की कथा सुना दी। कहते हैं आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इस रुचि नाम की प्रजापति के साथ विवाह होकर आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ और यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, कवि, रसपति, इद्म, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। इस प्रकार से दूसरी कन्या की वंश परंपरा सुनाने के बाद अब तीसरी कन्या के बारे में कहते हैं। मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या जिसका नाम प्रसूति था, ये प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह करके प्रसूति के गर्भ से 16 कन्या का जन्म हुआ। उनमें से दक्ष प्रजापति ने और प्रसूति ने अपनी 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया और धर्म से विवाह करके यह 13 कन्याओं को एक एक पुत्र का जन्म हुआ। श्रद्धा से शुभ का जन्म हुआ, मैत्री से प्रसाद का, दया से अभय का, शांति से सुख का, तुष्टि से मुद का, पुष्टि से स्मय का, क्रिया से योग का, उन्नति से दर्प का, वृद्धि से अर्थ का, मेधा से स्मृति का, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से प्रशय और मूर्ति से नर और नारायण नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रसूति की 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ और सबको एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसूति की 14वीं कन्या जिसका नाम स्वादा था, इसका विवाह पितृगण के साथ किया गया जिससे 4 पुत्र और 2 कन्या की प्राप्ति हुई। प्रसूति की 15वीं कन्या का विवाह जिनका नाम स्वादा था, इस स्वादा का विवाह अग्नि के साथ किया गया और स्वादा और अग्नि से 3 पुत्र प्रकट हुए। और प्रसूति की 16वीं कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया, परंतु शिव के साथ विवाह करके उसकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब विदुर जी के मन में प्रश्न होता है कि प्रसूति की 15 कन्याओं को पुत्रों की प्राप्ति हुई, परंतु यह 16वीं कन्या सती को जिसका विवाह शिव जी के साथ हुआ था, उसे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तब मैत्री जी कहते हैं कि सती को पुत्र की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि शिवजी और उसके ससुर दक्ष प्रजापति के बीच में कुछ झगड़ा था। ससुर और जमाई के बीच में झगड़ा होने के कारण उस झगड़ा के परिणाम में सती ने आत्महत्या कर ली। तब विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रे जी, भवेशील वताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सला। शिवजी तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, शिवजी बहुत शांत स्वभाव के हैं और दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री के प्रति इतना प्रेम करते हैं, तो ये शांत स्वभाव वाले और अपने पुत्री से प्रेम करने वाले, ये दोनों ससुर और जमाई के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? झगड़े का कारण क्या था? जो भगवान शिव अखिल चरा चरम गुरुम, अखिल चर अचर के गुरु है, निर्वेरम जो किसी के साथ वैर नहीं करते हैं, शांत विग्रहम जो शांत के विग्रह है, जिसे थोड़ा भी कुछ दे दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी बहुत महान भक्त हैं, थोड़ा भी दे दो तुरंत प्रसन्न। उनका एक नाम है भोलेनाथ और दूसरा नाम है आशुतोष। आशु माने तुरंत, तोष माने संतुष्ट हो जाना। शिवजी तुरंत संतुष्ट हो जाए। एक बार एक चोर, किसी के घर पे चोरी करने का समय नहीं मिला तो शिवजी के मंदिर में आया चोरी करने के लिए। चोरी क्या करे, शिवजी के मंदिर में बहुत बड़ा घंटा लटक रहा था, बेल, कहा कि चलो इसे ही चुरा कर भंगार वाले को बेच दूंगा, थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो शिवजी के मंदिर में वह घंटा चुराने के लिए गया, परंतु वह घंटा बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ था और बहुत ऊपर टंगा था, तो हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो वह चोर शिवलिंग के ऊपर खड़ा रह गया और शिवलिंग के ऊपर खड़ा रहकर उस घंटे को निकाल रहा था, तुरंत शिवजी प्रकट हो गए। वो चोर तो डर गया, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा क्या होगा। शिवजी ने कहा, क्यों भाग रहे हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। चोर तो सोच में पड़ गया कि मैं तो चोरी करने आया था, वो भी शिवजी का घंटा और वो भी लिंग के ऊपर खड़े रहकर। शिवजी ने इतना ही कहा कि देखो, संसार के लोग थोड़ा सा बिली पत्र चढ़ा देते हैं, मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तुम तो साक्षात मुझ पर चढ़ गए हो, क्यों प्रसन्न नहीं होऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कल हम लोग शिवलिंग के ऊपर खड़े रहकर, परंतु शिव जी आशुतोष है। तो विदुर जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आशुतोष और उनके ससुर के बीच में इतना झगड़ा क्यों था। तो मैत्रेय मुनि कथा सुनाते हैं, एक समय की बात, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया, दक्ष प्रजापति, प्रजाओं का राजा। तो संसार में देखा गया है जिसके पास पद और पोस्ट आ जाती है उसको अभिमान हो जाता है, पद का अभिमान। तो जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति बनाया गया और एक दिन की बात, उनकी सभा में ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी प्रजापति बैठे थे, और दक्ष प्रजापति जब उस सभा में प्रवेश किए तो सब लोग खड़े हो गए, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। अब क्या पता शिव जी भगवान का भजन कर रहे होंगे या जबकि आ गई होगी। शिव जी खड़े नहीं हुए और दक्ष प्रजापति को यह अच्छा नहीं लगा। देखिए, संसार में कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसे देखकर अपनी जगह पर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम हमसे अधिक गुण या उम्र में बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे प्राण ऊपर की ओर जाते हैं, तो उस ऊपर की ओर जाते हुए प्राण को पकड़ने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। नहीं तो यदि हम बैठे रहेंगे और प्राण ऊपर की ओर जाएगा तो उस प्राण का धक्का इतना जोर से लगता है कि हमारी आयु कम हो जाती है, जीवन की आयु कम हो जाती है। इसलिए हमसे बड़े व्यक्ति को देखकर खड़े हो जाना चाहिए, भगवान भी इसे पसंद करते हैं। नहीं तो आप देखें, रोमहर्षण सूत नैमिषारण्य में कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते बलदेव जी वहां पर पहुंचे, सभी श्रोता खड़े हो गए, रोमहर्षण सूत खड़े नहीं हुए, बलदेव जी ने तिनका लेकर मार डाला उसे। खड़े नहीं होने वाले की हालत भी बहुत गंभीर हो जाती है कभी कभी, हो जाना चाहिए। क्या पता शिव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरा जमाई है और इस प्रकार से मेरा आदर नहीं किया, तुरंत माइक हाथ में ले लिया और कहने लगा कि इसे मैं मेरा जमाई बनाया हूं, इसे मैंने मेरी लड़की दी है। अरे मैं तो विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु ये दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि विवाह करा इसके साथ। न तो कोई कपड़े पहनने का ढंग है, न तो कभी सलून में जाकर बाल कटाता है, भूतों के साथ घूमते रहता है, पाउडर लगाने पर राख लगाता है, शिव जी का अपमान करने लगा। और दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि आज के बाद शिव जी को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। शिव जी तो शांत बैठे थे, परंतु उनके साथ जो नंदी था, नंदी बैल क्रोधित हो गया और उसने दक्ष को श्राप दे दिया कि दक्ष, तुमने शिव जी को श्राप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे सभी अनुचर तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए और भौतिक सुख में लिप्त हो जाए। भृगु मुनि से नहीं रहा गया, भृगु मुनि ने उसे श्राप दे दिया। अरे नंदी, तुम श्राप दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम और शिव जी के सभी अनुचर राक्षस हो जाए, पाखंडी हो जाए। एक दूसरे को श्रापा श्रापी जब होने लगी, शिव जी खड़े हो गए, यदि मैं थोड़ी भी देर बैठा रहा तो अनिष्ट हो जाएगा। शिव जी खड़े होकर चलने लगे, नंदी भी चलने लगे, अपने घर पर आ गए। परंतु दक्ष के हृदय में ईर्ष्या की आग और जल रही थी। दक्ष ने दूसरे यज्ञ का अनुष्ठान किया और सभी देवताओं को बुलाया और सभी के इनविटेशन में लिखा कि सभी देवताओं नए नए कपड़े पहनकर आना, और यदि रास्ता लंबा भी हो जाए फिर भी कैलाश के ऊपर से आना, शिव जी को पता चले ऐसे आना। सभी देवताओं को बुलाया, शिव जी को ही नहीं बुलाया, शिव को भी पता चले, इसका अपमान करने के लिए स्पेशल यज्ञ किया था। तो शिव जी के ऊपर से कई सारे विमान आज तो जा रहे थे। पार्वती ने, सती ने देखा कि इतने सारे विमान, देवता नए नए वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, एक देवता को नीचे उतार कर पूछा होगा कहां जा रहे हो, तो आपको नहीं पता आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे ही नहीं बुलाया। देवता तो चले गए। सती आई भगवान शिव के पास, कहा पतिदेव क्या आप नहीं जानते हो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शिव ने कहा जानता हूं। सती ने कहा तो आपको नहीं लगता है कि पिताजी के घर पर जाना चाहिए, देखो ये सब लोग नए नए कपड़े पहन कर जाते हैं, चलो हम भी नए कपड़े पहन। शिव जी ने कहा देखो प्रिय, जहां पर आमंत्रण न हो निमंत्रण न हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, बड़े लोगों के वहां निमंत्रण की आवश्यकता होती है, नहीं तो बेइज्जती होगी। शिव पार्वती ने सती ने बहुत सुंदर बात कही कि पिता के वहां और गुरु के वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, वहां बिन बुलाए जाना होता है, हमारे पिता है। शिव जी तो मन में समझ गए थे कि ये मरने वाली है। शिव जी ने कहा देखो मैं नहीं आ रहा हूं, तुम्हें जाना है तो जाओ। पहले तो शिव जी पार्वती सती को भी ना कह रहे थे कि तुम मत जाओ, क्योंकि शिव जी को पता था कि ये वहां जाएगी तो मरने वाली है। सती को बहुत ना कहे मत जाओ मत जाओ, परंतु सती ने कहा देखो तुम यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। शिव जी सोचे अरे बाप रे बाप, यहां मरेगी तो वो केस करेगा, ऑलरेडी एक केस तो चल रहा है, वो उम्र कैद की सजा दे देगा, अच्छा है वहीं जाकर मरे, दोनों जगह पर मरना तो है, मेरे घर पर मरने से अच्छा है उनके घर पर जाकर मरे। शिव जी ने कहा ठीक है जाओ, तो तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। पार्वती ने अपना थैला तैयार किया, शिव जी को बारंबार पूछा, अभी भी कहती हूं चलो मेरे साथ। शिव जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा, नहीं गए। पार्वती निकल गई। शिव जी ने नंदी को कहा तुम साथ में जाओ, नहीं तो दक्ष फिर से कहेगा कि मेरी मेरी लड़की का विवाह किसके साथ कराया, मोटरसाइकिल भी नहीं भेजा। नंदी के ऊपर सवार होकर सती गई है। सती दक्ष प्रजापति के घर पर पहुंची, आधा एक घंटा हुआ परंतु उसे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने आदर नहीं दिया। सती ने पूछा कि इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, कोई मेरे ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या हुआ है। तब उस भरी सभा में किसी ने सती को कहा कि देवी इसके पहले जो यज्ञ हुआ था उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया था, और ये यज्ञ भी शिव जी का अपमान करने के लिए हो रहा है। तो सती ने जैसे ही सुना कि मेरे पति का अपमान हुआ है, भागवत में सती श्लोक बोलती है कि जिस भगवान जिस शिव की पूजा बड़े बड़े लोग करते हैं, जो समुद्र मंथन का विष पीकर संसार को जीवित रखे हैं, देवाधिदेव महादेव हजारों लोगों में जो पूजनीय है, ऐसे शिव जी का तुमने अपराध किया है। सती ने सोचा कि मेरे सामने मेरे पति का अपराध हो रहा है। देखिए आज आर्यवर्ष की नारी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, और सती ने देखा कि मेरे कान से मेरे पति का अपमान मैं सुनी हूं, अब यह शरीर कुछ काम का नहीं है, यह सोचकर उसी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वाहा हो गई। परंतु जाते जाते जगत की नारियों को उपदेश देकर गई है कि वास्तव में पत्नी और स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने कानों से अपने पति की बुराई न सुन सके, नहीं सुन पाई, मर गई। लेकिन दुर्भाग्य है आज संसार में अपने पति की बुराई सुनने की बात दूर रही, वे स्वयं अपने पति की बुराई करती रहती है। क्या कहा सती से यह सीखना चाहिए। और वहां पर शिव जी को पता चला कि मेरी पत्नी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्महत्या करके मर गई है। तुरंत भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका और वीरभद्र नामक असुर को प्रकट किया। वीरभद्र को आदेश दे दिया उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र शिव जी के अनुचर पिशाच भूत प्रेत ये सब लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए दमाधार युद्ध हुआ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। और वीरभद्र ने देखा कि यह दक्ष प्रजापति शिव जी का जब अपराध कर रहे थे तब भृगु मुनि अपने दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी का अपराध किया तब भृगु मुनि ने अपने दाढ़ी के बाल पर हाथ घुमाया था। वीरभद्र ने देखा कि इसे अपनी दाढ़ी बहुत प्यारी है, उसकी दाढ़ी को ही खींच लिया पूरा बिना शेविंग की। जब दक्ष प्रजापति शिव जी का अपराध कर रहे थे तब भग नाम के देवता आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। शिव जी के अपराध को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, वीरभद्र ने उसकी दोनों आंखों को ही निकाल दिया। और पुंसा नाम के देवता हंस रहे थे, शिव जी का अपराध हो रहा था वहां पर हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, 3200 दांत बाहर निकाल दिए। वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया पूरा। और दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव जी का अपराध किया था उस दक्ष प्रजापति का सिर ही काट दिया, खच करके उड़ा दिया, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इस प्रकार से प्रजापति का जब सिर कट गया तो कहते हैं सभी देवता शिव जी के पास गए, शिव जी को प्रार्थना किए, हे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, हमसे दक्ष प्रजापति से भूल हो गई, क्षमा कीजिए, आप प्रसन्न होइए। अब वे तो आशुतोष है ही, तुरंत प्रसन्न हो गए। बोलो प्रसन्न हो, क्या चाहिए? कहा और कुछ तो नहीं, परंतु ये भृगु नाम के देवता जब तक दाढ़ी खींच ली है तब तक उस दिन से उसे बहुत जलन हो रही है। शिव जी ने कहा ये भृगु नाम के देवता का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप कह रहे हो तो इसको बकरे की दाढ़ी लगा सकता हूं। तो उस दिन से शिव जी के द्वारा भृगु नाम के ऋषि को बकरे की दाढ़ी लगा दी। और कहा पुंसा नाम के देवता का कुछ करो, उसके दांत टूट गए हैं। शिव जी ने कहा इसके दांत नहीं आ सकते हैं, इसको जूस बनाकर पिलाते रहो। और भग नाम के देवता की आंख जो तोड़ दी है उसका क्या होगा? शिव जी ने उसे आंख प्रदान की और कहा दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया है उसका। शिव जी ने कहा देखो वो सिर तो नहीं आ सकता है, बकरे का सिर मिलेगा। कहा बकरे का, तो बकरे का दे तो दो आप। दक्ष प्रजापति के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। इस प्रकार से शिव जी प्रसन्न हुए और सबकी इच्छा को वहां पर पूर्ण की। तो शिव जी की वहां पुत्र प्रकट हो उसके पहले ही सती आत्महत्या करके मर गई, इसलिए शिव जी को संतान, सती को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तो अब मैत्रे मुनि मनु महाराज की तीन कन्या, पहले देवहूति की कथा सुनाए, फिर आकुति की कथा सुनाए, प्रसूति की कथा सुनाते हुए उनकी लड़की, उनकी कन्या सती की कथा सुनाई। अब मनु महाराज के दो पुत्र की कथा बाकी रही, एक थे प्रियव्रत और दूसरे थे उत्तानपाद। अब श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय में मैत्रेय मुनि उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। यद्यपि देखा जाए तो मनु महाराज के पुत्र में प्रियव्रत जो है बड़े पुत्र हैं और उत्तानपाद छोटे पुत्र हैं, परंतु प्रियव्रत की कथा भागवत के पंचम स्कंद में है और उत्तानपाद की छोटे पुत्र की कथा पहले बता रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं कि उत्तानपाद की कथा छोटे हैं फिर भी उनकी कथा पहले इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उत्तानपाद पुत्रस्य, उत्तानपाद का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, महान पुत्र ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और उसका चरित्र कैसा है? ध्रुवस्य चरित्र अति रमणीयत्वेन, मन को रमाने वाला, विरक्ति जनकत्वेन विरक्ति पैदा करने वाला, भक्ति जनकत्वेन भक्ति उत्पन्न कराने वाला, श्रोतु श्रद्धा जनकत्वेन सुनने से श्रद्धा उत्पन्न कराने वाला, भगवत उपासतो क्षित्र प्रवृत्तिम एव भगवान की उपासना करने वाले को भक्ति में शक्ति देने वाला यह ध्रुव महाराज का चरित्र उत्तानपाद के पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसलिए उत्तानपाद की कथा सबसे पहले सुनाएंगे। तो भक्तों, अब मैत्रेय मुनि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा सुनाएंगे, परंतु समय ठीक 4 बज चुका है, इसलिए यहाँ पर मैं कथा को विराम देता हूँ और कल हम ध्रुव महाराज की, ऋषभदेव की, पृथु महाराज की, जड़ भरत की और नरक का वर्णन, यह सब कथा सुनेंगे। परंतु आप सब लोग धैर्य से बैठे रहिए, मैंने कथा जल्दी समाप्त की है क्योंकि मैं तो मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, परंतु आपकी भाषा में लोकाध्यक्ष प्रभु बहुत सुंदर सुनाएंगे। ये मारवाड़ी भाषा बहुत मधुर है और मधुर मधुर भाषा में लोकाध्यक्ष प्रभु ये सभी कथा को, सिद्धांत के सार को बताएंगे। निवेदन करता हूँ लोकाध्यक्ष प्रभु स्टेज के ऊपर आ जाएंगे।